समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
अब जागो जीवन के प्रभात वसुधा पर ओस बने बिखरे हिमकन आंसू जो शोभ भरे उषा बटोरती अरुणगात रजनी की लाज समेटो तो कलरव से उठकर भेंटो तो अरुणाचल में चल रही बात अब जागो जीवन के प्रभात। जी हाँ, दुख और निराशा को पीछे छोड़ नई ऊर्जा के साथ और नए संकल्पों के साथ शुरुआत करने का समय आ गया है। और वैसे भी ये दिसंबर का महीना आखिरी महीना है 2025 को अलविदा कहने का, तो क्यों ना अपने बीते हुए कल से कुछ नया सीखकर हम एक नई शुरुआत करें। इसी के साथ ही आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में आपके साथ मैं हूँ आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट नीना मैथ्यू। नीना, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम आकर्षिता, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेर इन वी शेयर द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज 9th ऑफ दिसंबर।
नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हर चुनौती पर काबू पाने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की भावना इस शक्ति का प्रतीक है। श्री मोदी ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत या रचना नहीं है, बल्कि कर्तव्यों के प्रति लोगों को जागरूक करने की प्रेरणा का स्रोत है। लोगों के सामने एक आत्मनिर्भर भारत निर्मित करने के सपने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कल राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष पर चर्चा के दौरान ये बात कही। राष्ट्रीय गीत को 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था।
भारत हर चुनौतियों को पार करने में सामर्थ्य है। वंदे मातरम के भाव की वो ताकत है। वंदे मातरम ये सिर्फ गीत या भाव गीत नहीं, ये हमारे लिए प्रेरणा है। राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के लिए हमें झकझोरने वाला काम है और इसलिए हमें निरंतर इसको करते रहना होगा। हम आत्मनिर्भर भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं, इसको पूरा कर रहे हैं। वंदे मातरम हमारी प्रेरणा है।
इस चर्चा में भागीदारी करते हुए कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वंदे मातरम देश की आत्मा है और हर भारतीय इसे गाते हुए गर्व का अनुभव करता है। उन्होंने कहा कि गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर ने 1896 के कांग्रेस के एक अधिवेशन में वंदे मातरम का पाठ किया था। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस की काकोली घोष, जनता दल यूनाइटेड के देवेश चंद्र ठाकुर, तेलुगु देशम पार्टी की डॉ बायरेड्डी शबरी, शिवसेना के श्रीरंग वारनी, डीएमके के ए राजा, शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के भास्कर भगारे भी चर्चा में शामिल हुए। लोकसभा में आज चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी। इस बीच राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर भी चर्चा होगी।
President Draupadi Murmu will confer the Handicrafts Awards in New Delhi today to honor distinguished master craftspersons for 2023 and 2024. These prestigious national accolades celebrate exceptional artistic mastery and underscore the government's commitment to preserving and promoting India's rich and diverse handicraft heritage. Union Textiles Minister Giriraj Singh and Minister of State Pavitra Margarita will also attend the ceremony. A report.
As part of National Handicrafts Week, the Handicrafts Awards for the years 2023 and 2024 will be conferred today to honour outstanding master craft persons from across the country. The honours include the prestigious Shilp Guru Awards and the National Awards. In both years, 6 artisans will get the Shilp Guru Awards while 18 craftspeople will receive the National Awards. The Shilp Guru Awards, instituted in 2002, represent the highest recognition in the handicraft sector and are given to artisans who have demonstrated exceptional skill, innovation and contribution to preserving India's craft traditions. The National Awards, established in 1965, acknowledge exemplary craftsmanship across diverse handicraft forms. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav, has said that India will continue to work with global partners to secure a sustainable future for the world's seven big cat species and their habitats. The minister said this while addressing a high-level meeting on the Collaborative Initiative for Big Cat Conservation in New Delhi yesterday. Mr. Yadav emphasized that big cats like tigers, lions, snow leopards, cheetahs, pumas and jaguars are regulators for ecological balance and sentinels of ecosystem health. The minister said that India's approach in conservation is rooted in innovative nature-based solutions integrated with the country's cultural ethos. The meeting was held under the International Big Cat Alliance and brought together ambassadors and high commissioners of big cat range countries. A 7.6 magnitude earthquake struck off the coast of Aomori in northeastern Japan last night, triggering tsunami warnings and evacuation orders. The Japan Meteorological Agency, in a statement, said that earthquake's epicenter was at a depth of 50 kilometers. The JMA explained that a tsunami with waves up to 3 meters high could strike the northeastern coast of Japan following the earthquake. It added that tsunami warnings were issued for the Hokkaido, Aomori and Iwate regions, noting that tsunami waves between 20 and 50 centimeters high had been observed in several ports. Union Minister of Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat described Nagaland's Hornbill Festival as one of India's most cherished cultural spectacles and a shining jewel of the Northeast. In his virtual address at the inaugural of the Mon District edition of the Hornbill Festival 2025 yesterday, Mr. Shekhawat said, "The festival is not just an event but a living expression of the Nagas through their song, dance and music."
क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। पहला मैच ओडिशा के कटक स्थित बाराबटी स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। इस बीच भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया कि हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल दोनों चोट के बाद इस श्रृंखला में वापसी के लिए तैयार हैं। भारतीय कप्तान ने मैच से पहले प्रेसवार्ता में बताया कि टीम इंडिया ने 2024 के टी20 विश्व कप के तुरंत बाद 2026 के टी20 विश्व कप की तैयारी शुरू कर दी है। श्रृंखला का दूसरा मैच गुरुवार को चंडीगढ़ के मुल्लापुर में, तीसरा मैच धर्मशाला में, चौथा मैच लखनऊ में और अंतिम मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत वनडे में 2-1 की जीत के बाद टी20 श्रृंखला में उतरेगा।
In women's hockey, India will face Uruguay in the FIH Junior World Cup 2025 at the Centro Deportivo de Hockey Césped Estadio Nacional in Santiago, Chile today. The match will begin at 10 p.m. Indian time. The women in blue will look to continue their winning run as they recorded a commanding 3-1 victory over Wales in their last qualification match yesterday. India Meteorological Department, IMD, has forecast cold wave conditions over Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Odisha, Punjab, Telangana and Vidarbha today. Parts of the Andaman and Nicobar Islands are expected to witness thunderstorms and lightning during the day. The weather agency also predicted dense fog conditions today over parts of Assam, Meghalaya, East Uttar Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura and Odisha.
आज सवेरे में अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें और अब चेन्नई की खबरों के साथ हैं नीना।
तमिलनाडु इज लॉन्चिंग द टी एंड शोर project, a 1,675 crore rupees initiative funded by World Bank and state government to combat increased coastal disasters. 6 centers of excellence are being established to address climate impacts like erosion and pollution, while also focusing on livelihood improvement and community engagement for conservation. The state has mapped the 1,069-kilometer coastline for the coastal regulation zone, as well as established centers for excellence along with it to deal with climate change impacts such as shoreline erosion, storm surges, sea level rise, and plastic pollution. The project also targets microplastic pollution, aiming to prevent discarded fishing nets from entering rivers and the seas. Floating boom barriers will trap waste, which will then be processed at material recovery facilities. The Squash World Cup was officially inaugurated at Chennai yesterday. The event will be held from today to 14th of this month. The sport is organized by the Sports Development Authority of Tamil Nadu. This event also celebrates the 25th anniversary of the Indian Squash Academy. The event also featured innovative mixed-gender national squads structure and fast-paced scoring. The championship unites 12 nations from all five continental federations. It is also broadcast on World Squash TV and the Olympic Channel. The final game will take place on 14th December.
और अब दिल्ली से खबरें. दिल्ली सरकार ने देवी बस रूट 7701 ए को साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के मौजूदा टर्मिनल रूट से आगे बढ़ाते हुए मैदान गढ़ी में स्थित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान तक बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है. दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार की ये पहल सुबह और देर शाम के समय यात्रियों की सुरक्षा तथा सुगम सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मुहैया कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. डॉ सिंह ने कहा कि इससे अंतिम मील कनेक्टिविटी और बेहतर होगी. दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने बताया है कि पूर्वी दिल्ली के कर्दमपुरी क्षेत्र में अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र सेवा की शुरुआत हो चुकी है. एमसीडी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस केंद्र के शुरू होने से इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अब निःशुल्क परामर्श, जांच और उपचार उनके ही क्षेत्र में मिलेगा. निगम ने कहा कि एमसीडी का ये सतत प्रयास है कि हर परिवार तक बेहतर, किफायती और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में शुरू हुए दिल्ली एआई ग्राइंड को लेकर कहा कि दिल्ली सरकार चाहती है कि इसके माध्यम से राजधानी के बच्चे एआई युग का नेतृत्व करें. एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस पहल से स्कूल इनोवेशन लैब्स बनेंगे, बच्चे सृजनकर्ता बनेंगे और एआई उनकी जिज्ञासा को नवाचार तथा समाधान में बदलने में मदद करेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने के साथ साथ दिल्ली को भारत का नॉलेज और इनोवेशन हब बनाना उनकी सरकार का संकल्प है. वहीं दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने बताया है कि हवाई अड्डे पर परिचालन सुचारू रूप से जारी है. हालांकि कुछ उड़ानों को रद्द या उनके समय परिवर्तन किया जा सकता है. एक परामर्श में हवाई अड्डा प्रशासन ने कहा कि कर्मचारी व्यवधानों को कम करने और यात्रियों की सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं. यात्रियों को संबंधित विमानन कंपनियों से अपनी उड़ान की स्थिति के बारे में ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई है. परामर्श में कहा गया है कि हवाई अड्डे तक और हवाई अड्डे से मेट्रो सेवाओं, बसों और टैक्सी जैसे कई सार्वजनिक परिवहन विकल्प उपलब्ध हैं.
न्यूज फ्रॉम बेंगलुरु. Indian Army is one of the oldest and largest logistic arm. The Army Service Corps, ASC, celebrated its 265th Corps Day in Bengaluru yesterday. Army Service Corps, established in the year 1760, plays a critical role in every major military campaign undertaken by the armed forces. The unit has been awarded 4 Distinguished Service Orders and 25 military crosses. After independence, it is honored with 1 Padma Bhushan, 1 Padma Shri and 1 Mahavir Chakra, 14 Veer Chakra, 5 Kirti Chakra, 24 Shaurya Chakra and 148 Sena Medals for their bravery in operations across the country. During the anniversary celebrations yesterday, the Commandant ASC Center and College Lieutenant General J.K. Guerra paid tribute to the martyrs by laying a wreath at the war memorial. He saluted all ranks who laid down their lives in the line of duty. Wreaths were also laid at the animal transport memorial to pay homage to the animals and their handlers in the animal transport units. They are silent warriors who laid down their lives in wartime, sustaining the farthest and the highest posts of the army at the frontiers.
और अब समाचार मुंबई से। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने शिवसेना समाज सेवा केंद्र और शक्ति कार्ड की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र में परिवारों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को कम करना है। चैतन्य रंगा नीकर को समाज सेवा केंद्र के लिए राज्य समन्वयक नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर श्री रंगा ने कहा कि शक्ति कार्ड चिकित्सा लागत को कम करने और जरूरतमंद नागरिकों को आवश्यक सेवाओं से सीधे जोड़ने में एक प्रभावी उपकरण बन जाएगा। शक्ति कार्ड एमआरआई और सिटी स्कैन परीक्षणों पर 40-50% की छूट, रियायती एम्बुलेंस सेवाएं, मुफ्त आंखों की जांच, कम लागत वाली सर्जरी, साप्ताहिक मुफ्त स्वास्थ्य शिविर और 24/7 डॉक्टर ऑन कॉल सहायता प्रदान करेगा। वहीं महाराष्ट्र के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित नाट्य टूर्नामेंटों में से एक राज्य स्तरीय अटल करंदक एकांकी नाटक प्रतियोगिता का 12वां संस्करण पुणे में संपन्न हुआ। इसमें रंग पंढरी मंडली का नाटक बारद विजेता बना। इस कार्यक्रम में 102 प्रविष्टियां प्राप्त हुई, जिनमें से 25 टीमें फाइनल में पहुंची। रंग पंढरी को अटल करंदक ट्रॉफी और 1,00,000 का नकद पुरस्कार मिला। इस कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ कलाकार नीना कुलकर्णी और सुनील बर्वे को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
मूविंग ऑन टू हैदराबाद, द तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड 35 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स वर्थ अबाउट 2.43 करोड़ रुपीज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट यस्टरडे। द स्टेट गवर्नमेंट इन अ रिलीज अनाउंस्ड दैट द डे वन ऑफ द प्रेस्टिजियस तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट विटनेस साइनिंग ऑफ दीज एमओयूज इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर डी श्रीधर बाबू रिलेटिंग टू वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग डीप टेक, ग्रीन एनर्जी एंड एरोस्पेस अमंग अदर्स। इन द रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन एंड पावर सिक्योरिटी सेक्टर नियरली अग्रीमेंट्स वर्थ अबाउट 40,000 करोड़ रुपीज वर साइंड। अमंग अदर्स इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स रिलेटिंग टू सोलर पावर प्लांट्स, वाइटल पम्प्ड स्टोरेज सिस्टम्स फॉर ग्रिड स्टेबिलिटी एंड एडवांस्ड ईवी प्रोजेक्ट्स रिसीव्ड। In the aerospace, defense and logistics sector, agreements worth over 19,000 crore rupees were signed. Electronics sector saw about 7,000 crore rupees in MOUs from various companies.
और अब बारी कोलकाता की। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ग्रैंड फिनाले की शुरुआत कल पश्चिम बंगाल के NIT दुर्गापुर में हुई। इस प्रतियोगिता में देश भर से कुल 17 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। इस अवसर पर NIT निदेशक डॉ अरविंद चौबे ने बताया कि प्रत्येक श्रेणी के विजेता को 1.5 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। उन्होंने कहा कि छात्रों के नवाचारों ने पहले ही सरकारी और निजी क्षेत्रों में समस्याओं को हल करने में मदद की है, जो प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करता है। IIT खड़गपुर ने कल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 हार्डवेयर संस्करण ग्रैंड फिनाले की भी शुरुआत की। ये प्रतियोगिता 12 दिसंबर तक चलेगी। ये आयोजन तकनीकी नेतृत्व, नवाचार और राष्ट्र निर्माण विरासत में एक मील का पत्थर है। और अब बारी है महानगरों के मौसम का हाल जानने की। तो सबसे पहले दिल्ली के मौसम का हाल। दिल्ली में सुबह हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। वहीं मुंबई में आज मौसम साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहने का अनुमान है। कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है।
Chennai is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 24 degrees Celsius and maximum will be around 30 degrees. Bengaluru is expected to have mist. The minimum temperature was 18 degrees Celsius and maximum will be around 27 degrees. Hyderabad is expected to have fog mist in the morning and partly cloudy sky later. The temperature will hover between minimum of 13 degrees and a maximum of 31 degrees Celsius.
और आइए अब जानते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ।
in 1625, signing of a military treaty between Holland and England. In 1762, the British Parliament accepted the Treaty of Paris. 1910, French forces captured the Moroccan port city of Agadir. In 1924, the signing of a trade treaty between Holland and Hungary. In 2008, ISRO built the satellite for Europe's renowned satellite systems specialist EADM Asterisk. 1961, Tanganyika gained independence from British rule on December 9, 1961, to form the modern nation of Tanzania.
और आज के दिन ही 1917 में जनरल एलन बॉय के नेतृत्व में 1917 में ब्रिटिश सेना ने यरूशलम पर कब्जा किया और आज के दिन ही 1946 में देश का सर्वोच्च कानून बनाने वाली संविधान सभा की पहली भेंट आज के दिन ही हुई थी और 1971 में आज के दिन लिबरेशन वॉर के दौरान भारतीय सेना ने हवाई अभियान मेघना हेलीब्रिज छेड़ा था और चीन ने 1941 में आज के दिन ही जापान जर्मनी और इटली के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चेचक के विरुद्ध वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने के लगभग 10 वर्ष बाद ही इस रोग को आधिकारिक तौर पर आज के दिन ही उन्मूलन घोषित कर दिया गया था। और आइए बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। बिस्तरा है न चारपाई है, जिंदगी खूब हमने पाई है, ठोकरे दर बदर की थी हम थे, कम नहीं हमने मुंह की खाई है, आदमी जी रहा है मरने को, सबसे ऊपर यही सच्चाई है। आज हिंदी साहित्य की प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि त्रिलोचन शास्त्री की पुण्यतिथि है। वे आधुनिक हिंदी कविता की प्रगतिशील त्रयी के तीन स्तंभों में से एक थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में वे भी खासे सक्रिय रहे। उन्होंने प्रभाकर, वानर, हंस, आज और समाज जैसी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूं, ताप के ताए हुए दिन तुम्हें सौंपता हूं आदि। उन्हें 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
Today we fondly remember Vivian Blaine. She was an American actress and singer, best known for originating the role of Miss Adelaide in the musical theatre production of Guys and Dolls, as well as appearing in the subsequent film version. Dear listeners, enjoy the best comic number of all by Vivian Blaine. She got it all here from Guys and Dolls, every last comic moment in Adelaide's lament.
In other ways, just from waiting around for that plain little band of gold, a patient could develop a cold. You could spray her wherever you figure the streptococci lurk. You can give her a shot for whatever she's got, but it just won't work. If she's tired of getting that fish eye from the hotel clerk, a patient can develop a cold.
आज प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और राजनीतिज्ञ शत्रुघ्न सिन्हा का जन्मदिन है। हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को लोग बिहारी बाबू के नाम से जानते हैं। उन्होंने वर्ष 1969 में फिल्म साजन के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। शत्रुघ्न की फिल्म साजन के बाद अभिनेत्री मुमताज की सिफारिश से उन्हें चंदर वोहरा की फिल्म खिलौना 1970 में मिली। शत्रुघ्न ने इसे इतनी खूबी से निभाया कि रातों रात वे निर्माताओं की पहली पसंद बन गए। आइए सुनते हैं उनका ये डायलॉग।
शाम कहाँ है?
वो तो बिट्टू को लेकर दवा खाने गया है।
आए तो उससे कह देना छेनू आया था, बहुत गर्मी है खून में, तो बेशक आ जाए मैदान में। जो हसरत निकालनी हो निकाल ले वो, लेकिन आइंदा मेरे किसी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा के रख दूंगा।
और नीना, आपको पता है कि उनके चेहरे पर, मतलब गाल पर, एक कट का लंबा निशान था और ये निशान उनकी खलनायकी का प्लस पॉइंट बन गया। शत्रुघ्न ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन में इस कट का जबरदस्त इस्तेमाल कर अभिनय को प्रभावी बनाया था।
जिंदगी की ना टूटे लड़ी,
शत्रु शत्रुघ्न सिन्हा अपनी फिल्मों में नकारात्मक चरित्र के लिए जाने गए। उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में रामपुर का लक्ष्मण, कालीचरण, मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन के साथ की फिल्मों में दोस्ताना, काला पत्थर, शान और नसीब आदि हैं।
बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा।
Dame Judith Olivia Dench is an English actress. Dench made her professional debut in 1957 with the old VIC company. Over the following few years, she performed in several of Shakespeare's plays, including Ophelia in Hamlet, Juliet in Romeo and Juliet, and Lady Macbeth in Macbeth. She rose to international fame as M in Golden Eye. Dear listeners, let's listen to this excerpt from the movie GoldenEye.
Sky. They're not nations, they're individuals. Now look around you. Who do you fear? Can you see a face, a uniform, a flag? No. Our world is not more transparent now. It's more opaque. It's in the shadows. That's where we must do battle. So before you declare us irrelevant, ask yourselves, how safe do you feel? Just one more thing to say. My late husband was a great lover of poetry. And I suppose some of it sunk in, despite my best intentions. And here today I remember this, I think, from Tennyson. We are not now that strength.
ये क्या है जो इस जूते में गड़ता है? ये कील कहाँ से रोज निकल आती है? इस दुख को रोज समझना क्यों पड़ता है? आज हिंदी साहित्य के कवि रघुवीर सहाय की जयंती है। उनकी भाषा और शिल्प में पत्रकारिता का प्रभाव होता था और उनकी रचनाओं में आम आदमी की व्यथा झलकती थी। रघुवीर सहाय एक प्रभावशाली कवि होने के साथ ही कथाकार, निबंध लेखक और आलोचक भी थे। वे प्रसिद्ध अनुवादक और पत्रकार भी थे। उन्हें वर्ष 1982 में उनकी पुस्तक लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उनकी पुस्तकें थी आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और सीढ़ियों पर धूप में काफी चर्चित रही।
Kirk Douglas is an American actor, producer, director and author, centenarian. He is one of the last surviving actors of the film industry's golden age. Douglas is known for his explosive acting style, which he displayed as a criminal defense attorney in Town Without Pity. Douglas became an international star through positive reception for his leading role as an unscrupulous boxing hero in Champion. In 1955, he established Rena Productions, which began producing films as varied as Parts of Glory and Spartacus. So here's an excerpt from Spartacus.
In the powerful story of the gladiator rebel who sprang from slavery to challenge the awesome might of Imperial Rome.
The symbol of the Senate, all the power of Rome.
I imagine a god for slaves, and I pray.
What do you pray for?
I pray for a son who'll be born free.
आज भारत की प्रथम महिला फोटो पत्रकार हुमाई व्यारावाला की जयंती है। जिस समय हुमाई व्यारावाला फोटोग्राफर थी, उस समय कैमरा ही अपने आप में एक आश्चर्य कहलाता था। उस पर भी एक महिला का इस क्षेत्र में प्रवेश करना बड़े आश्चर्य की बात थी। उन्हें वर्ष 2011 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
John Milton was an English poet, polemicist and civil servant. His 1667 epic poem Paradise Lost was written in blank verse and included 12 books written in a time of immense religious flux and political upheaval. It addressed the fall of man, including the temptation of Adam and Eve by the fallen angel Satan and God's expulsion of them from Garden of Eden. Paradise Lost elevated Milton's reputation as one of history's greatest poets.
और आज ही रुकैया सखावत हुसैन की पुण्यतिथि है। वे बंगाली नारीवादी विचारक, लेखिका, शिक्षक और राजनीतिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने अपनी रचनाओं, कविताओं, कथाओं और निबंधों में स्त्री पुरुष समानता के लिए प्रगतिशील विचारों का समर्थन किया।
And now we have...
और आज ही बेगम पारा, जो कि फिल्म अभिनेत्री थी, उनकी पुण्यतिथि है। वे 1940 और 1950 के दशक में ज्यादातर सक्रिय रहीं। इंडस्ट्री में लगभग 50 साल की अनुपस्थिति के बाद उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया में सोनम कपूर की दादी की भूमिका के साथ फिल्मों में वापसी की थी और 1950 के दशक में उन्हें बॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल कहा जाता था। इतना ही, लाइफ मैगजीन ने उनके बेहतरीन कामुक फोटोग्राफ्स पर भी एक विशेष सत्र आयोजित किया था। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए आकर्षिता और नीना को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
Have a superb day. Namaskar.